आप सभी को सादर प्रणाम. झंकार नामक प्रोग्राम एक बार फिर से आपके साथ में मिल गए हैं. और जी हाँ, प्रतिमा का बहुत सारा नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी तक पहुंचे. बहनों का कार्यक्रम, महिलाओं का प्रोग्राम, वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम हर शुक्रवार को 3:50 से 4:50 तक प्लेनेट FM 104.6 द्वारा आप सभी के घरों तक पहुंचता है. मैं उम्मीद करती हूं आप इस मौके का फायदा लेंगे और हर शुक्रवार को अपने रेडियो को ट्यून करेंगे और बहुत ही मनचाहा प्रोग्राम, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, जानकारी से भरा प्रोग्राम हर शुक्रवार के दिन आप सुनते रहते हैं. और हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं. पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार. और 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है. अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में आज जाकर हमारे प्रोग्राम को कभी भी सुन सकते हैं. आज का सारा प्रोग्राम आधारित रहेगा महाशिवरात्रि पर. फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है. त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए. काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधित्व शिव का पूजन करना चाहिए. शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलसरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है. शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है. शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जो गए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए. एक सुंदर कथा इस व्रत के साथ में जुड़ी हुई है. प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपधार जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था. एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक ना मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे वो रहने लगा. और उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था. बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ना हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया. दिन भर के भोग से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया. और कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलांचे भरती आई. उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया. झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याद, मैं अभी गाभिन हूँ और प्रसव बेला भी समीप है और इसलिए इस समय मुझे मत मारो. प्रजन कृपा के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी. तो बहेलिया उसकी बातों को मान गया. और थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई. पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ और इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए और मारिए नहीं. मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी. बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया. रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई. बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया. तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याद्य, मैंने छोनों को हिरन से संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार डालना. बहेलिया दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया. प्रातः काल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरन उसी सरोवर पर आए. बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार शर संधान करना चाहा. ये कृपा देखते ही हिरन व्याद से प्रार्थना करने लगे. हे व्याद राज, मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिरणों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों, तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। और हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने यानी चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदला कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल ही हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण पहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। और इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने दो पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। हिंदू समाज यूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता और पूजता है, पर उनमें से प्रमुखता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात महादेव और भगवान शिव को ही प्रदान की गई है। ब्रह्मा को तो सृष्टि की रचना करने वाला, भगवान विष्णु को प्रमुखता सृष्टि का पालन करता देख और शिव को प्रलयंकर तांडवा नृत्य द्वारा प्रलय का देवता भी माना और कहा जाता है। विष्णु और शिव के मानने वालों ने उनके नाम से क्रमशः वैष्णव एवं शैव नामक संप्रदाय भी चलाए, माने और स्वीकार किए हैं। शैव संप्रदाय के अधिष्ठाता एवं प्रमुख देवता भगवान शिव ही माने जाते हैं। भगवान शिव को शंकर, भोलेनाथ, पशुपति, त्रिनेत्र आदि अनेक नामों से जाना और पुकारा जाता, तथा शिव को पार्वतीनाथ और गौरीनाथ या गौरीपति कहकर भी संबोधित करते हैं। शिव का स्वरूप तो अवश्य शिव यानी शुभ कल्याणदायक है, पर उनकी वेशभूषा किसी अघोरी संत से भी अधिक विकराल और भयावह स्वीकार एवं वर्णित की गई है। गौर वर्ण आग धतूरा पीने के कारण लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखें, सिर पर लंबा और सघन जटाजूट, उसमें एक तरफ कनियल नाग का तना फन, चंद्रकला और गंगा धारा का प्रतीक सत्री मूर्ति, गले में सांपों की माला, बाहों और कलियाओं पर भी लिपटे नाग, कमर पर लिपटी मृगछाला, हाथों में त्रिशूल और कमंडल, वाहन के लिए नंदीश्वर नामक बैल और भूत प्रेत ताल में ताल जैसे गणों अनुचरों से घिरे भगवान शिव शंकर का आदिवास या तो कैलाश पर्वत का शिखर माना जाता है, या फिर विकट शमशान घाट और शमशान नवास और प्रलय के देवता होने के कारण भगवान शिव को शमशान का देवता भी कहा जाता है। गौरी पार्वती उनकी जन्म जन्मांतरों की जो चिर संगनी है और सबसे पहले पूजे जाने वाले गणपति गणेश और देवताओं के प्रमुख सेनापति कार्तिकेय जैसे उनके पुत्र हैं। शिव के महाराज भोले बाबा इतने माने जाते हैं कि भक्तों की पुकार सुनकर उनके तनिक से दुख पीड़ा से ही द्रवित होकर उन्हें त्रिलोक की विभूतियां प्रदान कर दिया करते हैं। रुष्ट तो कभी किसी पर होती ही नहीं, नाराज होकर जब तांडवा नृत्य करने लगते हैं तो प्रलय की दशा एवं स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। भगवान शिव को नृत्य एवं नृत्य यानी नाट्य कला का भी आदिदेव माना गया है। महाशिवरात्रि के पर्व का संबंध इन्हीं भगवान शिव के साथ है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही सभी तरह के जीव जंतुओं के स्वामी एवं अधिनायक हैं। छोटा बड़ा विषैला या अन्य प्रकार का समूचा मानवेतर जीव कीट की संचार उनके अधीन रहकर उन्हीं की इच्छा से अपने सब प्रकार के कार्य व्यापार किया करता है। पुराणों विशेषकर शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव वर्ष में 6 मास तक तो कैलाश पर्वत पर रहकर तपस्या लीन रहा करते हैं और उसके बाद 6 मास तक कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर शमशान घाट में निवास किया करते हैं। उनके कैलाश पर्वतारोहण पर तपस्या में लीन हो जाने पर सभी तरह के कीट पतंग भी अपने बिलों में बंद हो या उनके समीप प्रस्थान कर जाया करते हैं। फिर जब उनका अवतरण कैलाश पर्वत से धरती पर हुआ करता है तो सारे कीट पतंग भी उनके साथ धरती पर आ जाया करते हैं। भगवान शिव का ये अवतरण प्रायः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ करता है। अवतरण का ये महान दिन ही शैव संप्रदाय या शिव भक्तों में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता एवं प्रसिद्ध है। शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इस महाशिवरात्रि के दिन की प्रतीक्षा किया करते हैं और इस दिन शिव मंदिर बड़ी अच्छी तरह से सजाए जाते हैं। भक्तगण सारा दिन निराहार रहकर व्रतोपवास किया करते हैं। सायंकाल या सुविधा अनुसार किसी भी समय फल विलपत्र और बद्री फल यानी कि बेर विशेष रूप से लेकर शिव मंदिरों में जाया करते हैं और वहां दूध मिश्रित शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराकर उस पर विलपत्र पुष्प और बद्री फल भेंट स्वरूप चढ़ाया करते हैं। ऐसा करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी की भी इस तरह बड़ी पूजा एवं सेवा की जाती है। शिव भक्तों की मान्यता है कि ऐसा करने से भूत प्रेत एवं कीड़े पतंगों के काटने की बाधाएं तो दूर हुआ ही करती है। भोलेनाथ शिव जी की कृपा से व्यक्ति के सभी मनोरथ भी पूर्ण हुआ करते हैं। फल चाहे जैसा भी प्राप्त होता हो, भगवान शिव भक्तों की श्रद्धा भक्ति का एक आधार प्रतीक तो है ही। शिव महाशिवरात्रि के दिन रात उसी प्रतीक की पूजा का जो श्रद्धालु भक्त आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के दाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रकट होने वाली गंगा के तेज प्रवाह को भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं में धारण कर इस मर्त्यलोक के उद्धार के लिए फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा था। ऐसी पौराणिक मान्यता के कारण महाशिवरात्रि को दिन जो है वो गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व माना जाता है। जो हो यो तो महाशिवरात्रि के त्योहार का स्वाद मुख्यतः शिव भक्तों के शैव संप्रदाय से ही है। फिर भी भारत का समूचा हिंदू समाज चिरकाल से ये दिन बड़े भक्ति भाव से मनाता आ रहा है और मनाता रहेगा। कारण भगवान शिव का भी भारतीय संस्कृति चेतना का एक मूल आधार स्तंभ होना ही प्रमुखता कहा और माना जा सकता है।
Shut up.
हमारे प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं गोपेश्वरी दीदी जी और ये शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपनी जुबानी द्वारा आप सभी को महाशिवरात्रि का संदेश पहुंचाने जा रही है।
मेरा नमस्कार एवं राधे राधे, बोले उमापति महादेव की जय। हम जरूर यही बताएंगे आप लोगों को कि ये पर्व कैसे शुरू हुआ और ये हम सभी के लिए क्या महत्व रखती है। महाशिवरात्रि बहुत से लोग यूं समझते हैं जैसे हम लोग रामनवमी या कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, ये भी भगवान शंकर का जन्म का या कुछ ऐसा पर्व होगा, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो अपने में बड़ी अनोखी है क्योंकि ये एक पर्व है जहां पर भगवान और भगवती का हम विवाह का दिवस का जो सेलिब्रेशन है, उत्सव है, उसको मनाते हैं। शिवरात्रि भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह का दिवस है। उसी दिन भगवान भगवती के साथ में लग्न किए और उनके विवाह हुई। ये इसलिए हमारे इतिहास में इतनी बड़ी घटना मानी जाती है या बड़ी पर्व मानी जाती है क्योंकि ये विवाह ही कुछ विचित्र था और कुछ विचित्र है और सदा रहेगा। ऐसे हुआ कि हिमवंत की पुत्री यानी पर्वत से प्रकट हुई मैना माँ का नाम और हिमाचल पिता का नाम, इनकी सुपुत्री पार्वती जो पर्वत से ही प्रकट हुई, तो इनके निष्ठा विश्वास श्रद्धा भी इतने ही अटल था जैसे पर्वत या पत्थर का होता है। जब एक बार नारद जी माता पिता के पास में पहुंचे और पार्वती जी से शिव जी के विषय में कुछ बातचीत किए तो पार्वती जी उसी दिन से नारद जी के वाक्य को परम वाक्य समझ करके और भगवान शिव को भजने लगी। उनको पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत घोर तप किए। नारद जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारे योग्य पति शिव जी हैं और उनसे ही तुम्हारा वरण होगा। इस बात को लेकर के पार्वती जी अपने समस्त जीवन को तपस्या में लगाया और जब ठीक समय आया तो फिर ब्रह्मा के कहने पर सप्त महर्षि जा करके पार्वती जी का बहुत बड़ा परीक्षा लिया। परीक्षा यही रही कि पार्वती जी को पहले बहकाने की बहुत चेष्टा किए, जैसे संसार में जीवात्मा जब परमात्मा से मिलन करना चाहता है, भक्ति मार्ग पर चलने लगता है, तो माया की अपनी अलग जाल, अपने खेल, अपने तमाशे लेकर के हमारे सामने प्रकट हो जाती है। माया तो सदा रहेगी, वो जाएगी नहीं, लेकिन योग माया पति को यदि हासिल करना है तो हमारा भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास बहुत दृढ़ होनी चाहिए और बहुत पवित्र होनी चाहिए। पार्वती जी में यही आप पाएंगे कि उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी प्रेम इतना अटल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पर्वत से जन्म लेने वाली तो ऐसे ही अटल रहेगी, जैसे एक पत्थर, पत्थर से ही सोना बनता है, और सोने को कितना भी तपा दो, आग में कितना भी डाल दो, जला दो, लेकिन सोना अपने सोनेपन को कभी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार से चाहे जितने भी कोशिश किए गए, लेकिन पार्वती अपने जो उन्होंने वादे कर लिए थे मन से, उस पर अटल थी, अपने जिद पर अड़ी हुई थी। कोटि कोटि रही लगर हमारी, बर हूँ शंभु न तू रहूं कुवारी। और उन्होंने सप्तऋषियों से यही एक जवाब दिया कि मैं जन्म जन्म से यही एक भिक्षा मांगती हूँ कि या तो मैं वरण करूं तो शिव जी से, नहीं तो मैं कुवारी ही रहूंगी। और आप लोग कितना भी बहकाने की चेष्टा करें, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि मैं अपने जो वादे हैं, अपना जो विश्वास है, अपना जो श्रद्धा है, उसको नहीं मिटा सकती। सप्त महर्षियों ने उनको बहकाने के लिए सबसे प्रथम तो यही बात कहा था कि सोचिए आप किसके लिए इतना बड़ा तप, इतने बड़े व्रत कर रहे हो, वो कौन है? वो शंकर जी जिनके माथे पर चंद्रमा हो और जिनके शीर्ष पर गंगा हो और जो मुंड मालन धारण किए हो, मरे मुर्दों और जितने भी मरे लोग होते हैं उनके जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को माला बना करके वो अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं और सर्प को लपेटे हुए हैं, और ऐसी भी सर्प नहीं जो सर्प को आप प्यार कर सके, डेडली पॉइजनस, यानी कि इतने विष उसमें, ऐसे सर्प सारे बदन में लपेटे हुए और ऊपर से नग्न बदन वाले, कपड़े भी नहीं बेचारे के पास में, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही नग्न घूमते रहते हैं, तपस्वी बन गए हैं। जब से सती का त्याग किया तब से बस एक तपस्वी के भेष में यूं ही कभी यहाँ कभी वहाँ, ना घर ना द्वार। इसी बात को पार्वती जी के माता मैंने ने कहा था, पार्वती जी से बहुत समझाने की चेष्टा की थी, क्योंकि सप्त महर्षियों ने ये बात कही थी उनके माता पिता से भी, और पार्वती जी के पास में जाकर के यही बात कह रहे हैं। और ये इतना भी कहा कि देखो नारद जी के कहने में मत आओ, क्योंकि नारद जी ने जिस जिसका लग्न किया है सबका घर बर्बाद कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत ही उल्टे सीधे बातें करने की चेष्टा किए सप्त महर्षि। ये क्यों किए? ये परीक्षा थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी। पार्वती जी की अटलता, पार्वती जी की श्रद्धा, पार्वती जी की पवित्रता को अंदाजने के लिए ये ब्रह्मा ने ही कहा था कि पहले जाकर के पार्वती को खूब ठीक तरह से पहचान लो, उनकी परीक्षा ले लो, तत्पश्चात उनको उनके माता पिता के यहाँ सौंप देना। उन्होंने घोर तप कर लिया है और उनके तप अपूर्ण हुई है, इसलिए ये सब बातें कह करके बहुत बहकाने की चेष्टा किए। जब तभी पार्वती जी ने कहा था कि जन्म जन्म से मेरी यही एक लगन रही है, या तो मैं शंकर जी से ही विवाह करूंगी या फिर मैं कुंवारी ही रहूंगी। तो कोई ऐसा गुण अवगुण नहीं, कोई ऐसा कामना नहीं जिसको ले करके जीवात्मा को परमात्मा को हासिल करना है, ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। जैसे कि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र बनाया और उसमें उन्होंने लिखा है और संपूर्ण जगत को ये ज्ञान दिया है कि भक्ति ये है जिसमें गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, गुण अवगुण नहीं देखते हम अपने प्रेमास्पद का। प्यार करने वाला कभी भी नहीं देखता कि उनकी कैसी क्वालिटीज है। तो बहुत सी डिसक्वालिटीज बताने की चेष्टा जब किए सप्त महर्षि, तब भी पार्वती जी अटल है अपने प्रेम में, क्योंकि उनके प्रेम कोई गुण अवगुण में नहीं डिपेंडेंट है, निर्भर है। इसी प्रकार से कामना रहितम, उनकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि सप्त महर्षियों ने बहुत बहकाने की चेष्टा की कि उनके तो घर द्वार है ही नहीं, बेघर वाले हैं, और फिर उनके पास में ना धन दौलत कुछ भी नहीं, और वो क्या संसार बसाएंगे। और देखो तो सती का त्याग कर दिया, सती के साथ में विवाह हुआ, तो देखो सती अपने ही पिता के यहाँ जाकर के और यज्ञ के अग्नि में ही अपने आप को समाप्त कर दिया। उनके साथ में कौन नारी टिक सकती है। इस प्रकार से बहुत बातें किए, लेकिन यदि पार्वती जी के प्रेम में कोई भी कामना होता तो शायद उनके प्रेम जो है वो ढह जाता। लेकिन पार्वती जी ने निष्काम रूप से प्यार किया है, उन्होंने शिव जी को ही अपना माना है, अपना जाना है। इसी प्रकार से आत्मा को जब भगवान यानी परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए चलना है, तो भक्ति में ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के प्रति गुण अवगुण या उनके प्रति हम इस प्रकार से कामनाओं की ढेर लेकर ना जाएं। यही यहाँ पर सिद्ध किया। और प्रतिक्षण वर्धमानम, और वो प्रेम सदा बढ़ता रहता है। लव इज नॉट लव दैट ऑल्टर्स व्हेन ऑल्टरेशन फाइंड्स नॉर बैंड्स टू द रिमूवर टू रिमूव इट, इट इज अ नेवर फिक्स्ड मार्क सीज ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सुंदर एक कवि लिखा, उसने भी उन्होंने यही बात लिखा जो हमारे वेद शास्त्र तो सदा से कहते चले आ रहे हैं, हमारे संत महापुरुष सदा से बताते चले आ रहे हैं कि प्रेम अटल होनी चाहिए, इतनी अटल होनी चाहिए जैसे आप यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का प्रेम देखते हैं। यही एक जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम होना चाहिए, यही एक मनुष्य का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए स्वयं भगवान और भगवती इस संसार में अवतरित होते हैं और इस प्रकार से लीला करते हैं वो लीलाधारी भगवान। उनकी क्या शादी और उनकी क्या विवाह करना, वो तो सदा से योग माया पति हैं शिव जी, और सदा से योग माई माँ है पार्वती जी, वो तो जगत माता जगत पिता हैं। लेकिन ये लीला रचा करके जगत को यही दिखाते हैं, जगत के कल्याण के लिए बताते हैं कि हमारे प्रेम और भक्ति में इतना पवित्रता होनी चाहिए और इतनी ऊंची हमारा विचार और हमारा भक्ति होनी चाहिए कि जो भक्ति में ना कोई गुण अवगुण का चक्कर हो, ना कोई कामना की बीमारी हो, और जो सदा बढ़ती ही रहे, कभी घटे ना, घटने की सभी प्रकार से आपको सब कुछ मिले, काम क्रोध लोभ मोह सभी बीमारियां मिले, लेकिन फिर भी प्रेम ना घटे, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। और पार्वती जी के जीवन में ऐसे बहुत ही परीक्षाएं आए, और जब सप्त महर्षि उनके जवाब सुनकर के अति प्रसन्न हुए, तो पार्वती जी को फिर उन्होंने ये वर दिया कि ऐसा ही होगा जैसे तुमने अपने मन में संकल्प किया है, अब चलो अपने माता पिता के यहाँ चलो। तो पार्वती जी को फिर वे उनके माता पिता के यहाँ यानी हिमाचल और मैना के यहाँ ले जाकर के उनके माता पिता को सौंपे। इस प्रकार से सप्त महर्षि जाकर के ब्रह्मा से सारे कथन सुनाए, और ब्रह्मा अति प्रसन्न होकर के इस बात को फिर आगे बढ़ाने की चेष्टा किए। उसी समय की बात है कि देवताओं के यहाँ पर बहुत बड़ा हलचल मच रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा राक्षस तरका जो जन्म लिए थे, उन्होंने समस्त देवलोकों और समस्त मनुष्य पर, समस्त पृथ्वी पर इतना अपने राक्षसपन को फैला दिया था कि देवता लोग इधर उधर भाग रहे थे, सहायता चाह रहे थे। उसी समय की बात है कि वो ब्रह्मा के पास जब गए तो ब्रह्मा से आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हम लोगों को किसी प्रकार से आप सहायता कीजिए, क्योंकि ये राक्षस तो हमारे देवलोक को भी जीत लिए हैं, अब इनका कैसे हम लोग समाप्ति करें। तो ब्रह्मा ने कहा था शंकर जी के वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक राक्षस को मार सकेगा, और तो विश्व में कोई ऐसा शक्ति नहीं हो सकेगा जो उनके सामना कर सके। तो देवताओं भी उधर खुशी मना रहे हैं ये सुनकर के कि कम से कम उन्हें कोई रास्ता तो मिला, लेकिन अब शंकर जी का विवाह हो तब तो उनका सुपुत्र पैदा हो, तभी तो वो सब राक्षसों को और तारका राक्षस को वध करें, मारे और खत्म करें। तो इसके लिए देवता लोग ने जल्दी जल्दी कामदेव को तैयार किया, वो भी ब्रह्मा के कहने पर। और जब कामदेव को तैयार किया तो कामदेव अपने काम को समस्त विश्व में फैलाते हुए और अपने पांच वाण को लिए सीधे कैलाशधिपति शंकर जी के पास में पहुंचे। और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पांच तीरों को मारा, क्योंकि जब वाण लेकर कोई भी योद्धा चलेगा तो वाण फिर कहीं ना कहीं तो अपना लक्ष्य बनाएगा, और लक्ष्य था शंकर जी का हृदय। शंकर जी के हृदय में जब कामदेव के बाण चला तो कामदेव कौन है जो कामना को प्रकट करते हैं, तो काम वेग लेकर के वो शंकर जी के हृदय में उत्पन्न हुए। शंकर जी ने अपने समाधि को खोला, अपने तीसरे आंख को खोल करके जैसे ही देखा तो सामने कामदेव, वो जान ही रहे थे कि जब वो शिव जी के पास में जा रहे हैं तो उनका अंत तो जल करके ही होगा, और उसी समय वो जल गए। लेकिन उनकी बीवी, जब कामदेव की बीवी आई और बहुत रोई गई, तो शिव जी ने कहा ठीक है, कामदेव सदा अब बिना शरीर के ही समस्त जगत में व्याप्त रहेंगे। इस प्रकार से कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग किया, क्योंकि जब तक समाधि ही भंग ना हो तब तक कोई बातचीत विवाह का नहीं चल सकता। तो समाधि जब भंग हुआ तो उसी समय फिर शिव जी ने ये बात सुनी कि पार्वती जी जो है वो उनके लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुई है। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं शिव जी से इस बात को कहा कि देखो अब तुम्हें विवाह करनी चाहिए, और तुम्हारा विवाह के लिए यहाँ पर हिमाचल की कन्या पार्वती जन्म ली है, अब समय ठीक आ गया है। कथन बहुत लंबी है, अब इसे संक्षेप में इतने ही समझ लीजिए कि इस बात को उन्होंने अपने इष्ट देव के बात मानते हुए शिव जी ने, क्योंकि लीला क्षेत्र में सीताराम शंकर और पार्वती जी के माता पिता माने गए हैं, और शिव और पार्वती श्री रामचंद्र और सीता जी के माता पिता माने गए हैं। ये लीला क्षेत्र में भगवान और भगवती अनंत रूप धारण करके स्वयं माँ भी बनते हैं, स्वयं भक्त भी बनते हैं, स्वयं गुरु भी बनते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण रूप से अपना सर्वस्व मानते हुए शिव जी ने इस बात को मान करके और उन्हें प्रणाम करते हुए स्वीकार किया, जबकि उन्होंने कहा एक तपस्वी के लिए उचित नहीं, फिर भी आपके कहना है तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। यानी कि वो भी इस बात को मान लिए कि अब वो पार्वती जी के साथ में विवाह करेंगे, लेकिन पार्वती जी को इस बात को भी मालूम नहीं, इसलिए उसका उनका जो भक्ति और उनका जो पुकार वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो फिर अनुकूल समय होते ही सप्त महर्षि हिमाचल के पास में जाते हैं, और वहां पर जाकर के तुरंत शादी के बात को छेड़ते हैं, और माता पिता ने इस बात को ठीक मान करके समझ करके सही लग्न देख करके और शिव के पास में फिर ये संदेशा पहुंचा कि अब पार्वती जी का विवाह होने का तारीख दिन सब तय हो गया है। शिव जी भी इस बात को स्वीकार करते हुए और उस दिन पदार्पण किए, लेकिन जब शादी के दिवस आया तो शिव जी की बारात भी क्या विचित्र, वहाँ समस्त देवी देवता आए, क्योंकि देवता लोग तो बड़े खुशी हो रहे हैं कि शंकर जी का जो पुत्र होगा वो उन लोगों का रक्षा करेगा, तो वो चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। वो सब बारात लेकर आए तो भगवान विष्णु ने मजाक में ही कह दिया और सच में ही मान करके कहा शिव जी से कि ये बाराती आपका जो है ये बढ़िया नहीं है, ये कुछ उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं शंकर जी जैसे बताया गया कि मुंडमाल धारण किए हुए और सर्प लपेटे हुए और इस प्रकार से चंद्रमा हासिल है, गंगा जी बह रही है, चलते हैं, तो अमंगल रूप धारण करते हुए बड़े मंगलमय बड़े सुंदर हृदय वाले वो शिव जी जब आते हैं, तो विष्णु जी ने जब कहा कि ये लग्न में तो बाराती भी ऐसी ही होनी चाहिए, तो शिव जी मुस्कुरा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपका ये मजाक नहीं गया अभी। तो इस प्रकार से विष्णु जी के बात को लेकर के शिव जी ने कहा ठीक है हम अपने बराती बुलाएंगे। तो मानो जैसे यमलोक से सभी पदार्पण कर चुके हो, किसी का सिर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, इस प्रकार से किसी का आंख ही नहीं और किसी के सौ सौ आंखें, किसी का हाथ पैर नहीं और किसी के सौ सौ हाथ पैर, इस प्रकार से भूत पलटन पार्टी लेकर के शिव जी चले अब बढ़िया बाराती आए। तो जैसे ही नगर के लोग देखें वो सब भागने लगे, बच्चे तो सब भाग करके चले गए, लेकिन जो बहुत ही बड़े पुण्य आत्मा थे, जिनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ इतनी ऊंची थी, वही शिव जी और पार्वती जी के विवाह में भाग ले पाए, वही वहाँ रुक सके। ऐसे वेशभूषा को देख करके रुकने वाला वही मनुष्य हो सकता है या वही प्राणी हो सकता है जो बहुत बड़ा भक्त और बहुत पुण्य आत्मा हो। तो उनके बारात और उनके विवाह को और कौन देख सकेगा। इस प्रकार से जो परम भक्त पुण्य आत्माएं थे वो फिर बारात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और शिव जी और पार्वती जी का विवाह बहुत ही धूमधाम से समस्त जगत का कल्याण हित के लिए और समस्त जगत को इतने सुख और शांति पहुंचाने के लिए फिर बहुत धूम धमाके से हुआ। आज की रात्रि हम लोगों को इतना ध्यान रखनी चाहिए कि खा पी करके या फिर हंस गा करके हम लोग नहीं बिताएं। आज की रात्रि जब हम बैठे तो भगवान शंकर जी और योगमाई माँ शक्ति यानी जगत माता जगत पिता पार्वती जी और शंकर जी का हम ध्यान करें, सुमिरन करें और अपने हृदय में ऐसी भक्ति की जागृता करें कि हमारे अंदर भी इतना सुंदर ऐसा सुंदर श्रद्धा अटल विश्वास प्रेम और भक्ति हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के प्रति हो जैसे पार्वती जी की शंकर जी की प्रति थी।
कि आज का जो प्रोग्राम रहा है ये सारा प्रोग्राम महाशिवरात्रि पर आधारित रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपका मन भाया। और प्रोग्राम को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं, मगर जाने से पहले आपको एक बार फिर से मैं पता दे रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। सात दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे रेडियो पर नहीं हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सात दिनों के भीतर में आप जरूर जाएंगे अगर आज आपको मौका नहीं मिला हमारे प्रोग्राम को सुनने को। और वैसे तो प्लेनेट एफएम 104.6 के लहरों द्वारा आप हमारे प्रोग्राम को हर शुक्रवार को 3:50 से 4:50 तक सुन सकते हैं। और मेरी ओर से बस इतना ही उम्मीद रखती हूँ। हमारे प्रोग्राम को आप सुनते रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे और चाहते रहेंगे। और जाने से पहले बस मेरी ओर से इतना ही कि नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और किमचो आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों तक पहुंचे।
सिंदूरवा